नमस्कार, आज हम बात करेंगे साइबर सुरक्षा और डिजिटल फ्रॉड की दुनिया पर, वो भी हमें मिले कुछ स्रोतों के आधार पर। कोशिश रहेगी कि इसमें से कुछ खास बातें और चौंकाने वाले तथ्य निकालें। कभी सोचा है कि फोन बिना कुछ इंस्टॉल किए भी हैक हो सकता है, या फिर वो ब्लूटूथ जिसे हम हमेशा ऑन रखते हैं उसमें क्या खतरा छिपा है?
बिल्कुल, ये ऐसे सवाल हैं जो अक्सर हमारे जहन में आते हैं, और जानकारी यही बताती है कि फोन सिक्योरिटी के कई पहलू हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारी कुछ आम आदतें ही अनजाने में बड़ा रिस्क पैदा कर सकती हैं। चलिए इन स्रोतों से मिली कुछ अहम बातों पर जरा गौर करते हैं।
हाँ, मैंने स्रोतों में एक आंकड़ा देखा और मैं सच में चौंक गई। पता चला कि एक खास इलाके में हर महीने करीब 750 आईफोन चोरी हो रहे हैं। ये सिर्फ फोन चोरी जैसा नहीं लगता, ये तो कुछ बड़ा, कोई ऑर्गेनाइज चीज लगती है।
हाँ, ये आंकड़ा वाकई सोचने वाला है, और ये दिखाता है कि मामला सिर्फ फोन चुराने तक का नहीं है। ये एक तरह से संगठित साइबर क्राइम का हिस्सा हो सकता है। हो सकता है इन डिवाइसेस का इस्तेमाल डेटा चोरी या आइडेंटिटी फ्रॉड के लिए भी हो रहा हो। इसका असर सिर्फ फोन के मालिक तक सीमित नहीं रहता।
अच्छा, तो ये तो हुई फिजिकल चोरी की बात, लेकिन डिजिटल दुनिया में घुसपैठ, उसके तो और भी रास्ते हैं जैसा हमें जानकारी मिली है। अक्सर यही लगता है ना कि जब तक कुछ डाउनलोड या इंस्टॉल न करें तब तक सेफ है।
जी, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। देखिए, सूत्रों के मुताबिक फोन हैकिंग सिर्फ मैलवेयर इंस्टॉल करने से नहीं होती। असुरक्षित पब्लिक वाईफाई यूज करना या धोखे से ओटीपी दे देना, फिशिंग लिंक्स पर क्लिक करना, यहां तक कि ब्राउजर का ऑटोफिल फीचर, उसका भी गलत इस्तेमाल हो सकता है। और तो और, सिर्फ कोई कॉम्प्रोमाइज वेबसाइट खोल लेना भी आपकी जानकारी चुराने के लिए काफी हो सकता है। बिना आपकी जानकारी या किसी इंस्टॉलेशन के भी फोन में सेंध लग सकती है।
और ब्लूटूथ, हम सब तो उसे बस हेडफोन या स्पीकर के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्रोतों में इसके सीरियल प्रोफाइल का जिक्र था। सुनने में थोड़ा टेक्निकल है, क्या इसका मतलब है कि कोई दूर से फोन कंट्रोल कर सकता है?
बिल्कुल, आपने सही समझा। ब्लूटूथ का ये पहलू अक्सर अनदेखा रह जाता है। असल में जानकारी यही कहती है कि अगर कोई हैकर इस सीरियल प्रोफाइल तक पहुंच बना ले तो वो दूर बैठे आपके फोन के मॉडम को कंट्रोल कर सकता है। जरा सोचिए, आपके फोन से आपकी जानकारी के बिना कॉल या मैसेज किए जा सकते हैं। इसीलिए जब जरूरत ना हो, ब्लूटूथ बंद रखना एक बहुत बहुत जरूरी सावधानी है।
ये तो ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, सोशल मीडिया, वहां भी खतरे कम नहीं? फेसबुक क्लोनिंग की समस्या तो आजकल बहुत सुनने में आती है, इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है?
जी, इसके लिए दो मुख्य बातें हैं जो स्रोतों से पता चलती हैं। पहला, अपनी फ्रेंड लिस्ट की प्राइवेसी सेटिंग को ओनली मी यानी सिर्फ मैं पर सेट कर दें। दूसरा, आपकी पोस्ट कौन देख सकता है उसे फ्रेंड्स ओनली यानी सिर्फ दोस्त तक ही रखें, पब्लिक तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपराधी अक्सर आपकी फ्रेंड लिस्ट देखकर ही आपके दोस्तों को निशाना बनाते हैं क्लोन प्रोफाइल से पैसे मांगने के लिए। तो ये सेटिंग्स इस रास्ते को काफी हद तक बंद कर देती हैं।
सही कहा। और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, खासकर विदेश में हुए ट्रांजैक्शंस जहां ओटीपी नहीं लगता, ये भी एक बड़ी चिंता है। अगर ऐसा हो जाए तो क्या करें, किसकी जिम्मेदारी है?
बिल्कुल। अच्छा, और अगर कोई पुराना सेकेंड हैंड फोन खरीद रहा हो तब क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
सेकेंड हैंड फोन लेते वक्त तो बहुत सतर्क रहना चाहिए। जैसा स्रोतों में भी बताया गया है, सबसे पहले फोन का IMEI नंबर लें, और उसे सरकारी पोर्टल जैसे KYM नो योर मोबाइल ऐप है उस पर जरूर चेक करें। इससे पता चल जाएगा कि फोन चोरी का तो नहीं या कहीं ब्लॉक तो नहीं किया गया है, और फोन हाथ में आने के बाद उसे पूरी तरह से फैक्ट्री रीसेट या फॉर्मेट करना ना भूलें। बहुत जरूरी है ये, ताकि कोई छिपा हुआ मैलवेयर या ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर ना रह जाए। कभी कभी लोगों को कंपनियों या लॉ फर्म से लीगल नोटिस मिलते हैं बिल पेमेंट वगैरह के झगड़ों में, और वो घबरा जाते हैं।
हाँ, अक्सर ऐसा होता है, लेकिन देखिए, इन नोटिसों से डरने की जरूरत नहीं है। जानकारी यही बताती है कि ये कोई कोर्ट का आदेश नहीं है, ये बस कम्युनिकेशन का अपनी बात रखने या बकाया मांगने का एक फॉर्मल तरीका है। इसका शांति से जवाब देना चाहिए, और जरूरत लगे तो कानूनी सलाह जरूर लेनी चाहिए।
तो कुल मिलाकर देखें, आज की बातचीत से ये तो साफ है कि कुछ आसान सी चीजें जैसे ब्लूटूथ बंद रखना, सोशल मीडिया पर सही प्राइवेसी सेटिंग्स रखना और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होने पर अपने राइट्स जानना, ये हमें कई डिजिटल खतरों से बचा सकती हैं।
बिल्कुल, और साथ ही ये याद रखना भी जरूरी है कि साइबर क्रिमिनल्स लगातार चालाक हो रहे हैं, वो अपनी तकनीकें बदल रहे हैं। जैसा कि एक स्रोत में जामताड़ा का उदाहरण था, कैसे वो लोग साधारण फोन कॉल फ्रॉड से आगे बढ़कर अब 5-स्टार होटलों से ऑपरेट कर रहे हैं। ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, ज्यादा टेक्निकल हो गए हैं। इसलिए लगातार सीखते रहना और चौकन्ना रहना ही सबसे बड़ा बचाव है।
और जाते जाते एक सवाल सबकी सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी डिजिटल सुरक्षा की जिम्मेदारी मतलब अनजाने में बैंकों या टेक कंपनियों पर ज्यादा डाल रहे हैं? या फिर अब वक्त आ गया है कि हम खुद पर्सनल लेवल पर और ज्यादा जागरूक बने और अपनी डिजिटल सुरक्षा के लिए सक्रिय रूप से जिम्मेदारी लें?